السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق بخشی. ہم میں سے کوئی بھی اللہ کی بخشی ہوئی توفیق کے بغیر نہ یہاں آ سکتا تھا اور نہ یہاں آ کے کچھ سن سکتا ہے یا سنا سکتا ہے. تو اسی رب سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس وقت کا بہترین استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اور میرا گمان ہے کہ آپ میں سے جتنی بھی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ان میں سے اکثریت سمجھ گئی ہوں گی کہ یہ آیت کہاں سے ہے. سورۃ یاسین کی آیت نمبر 12 ہے، اور یہ قرآن پاک کا وہ حصہ ہے کہ جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ کثرت سے پڑھا جاتا ہے. ایک فطری محبت محسوس کرتے ہیں لوگ اس سورت کے ساتھ. کسی کے گھر میں جا کے آپ قرآن پاک لیں تو عموماً یہ صفحے کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے کافی ان کا رنگ بدلا ہوتا ہے. بعض لوگ اس کو اپنے طریقوں سے پڑھتے ہیں، کچھ آگے سے ملا کے، کچھ پیچھے سے. میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم اپنے اس مختصر سے وقت میں اس سورت کی صرف ایک آیت پہ بات کریں، اور پھر آخر میں ہم اس چیز کا فرق محسوس کریں کہ ایک ہی سورت کو کئی بار پڑھنا ایک طرف، جس کو ہم سمجھتے نہیں، جس سے صرف ہم برکت لینا چاہتے ہیں، جس سے ہم کوئی مشکل ٹلوانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف اس کلام کی صرف ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا زندگی میں کیا تبدیلی لاتا ہے. اور اسی کی بنیاد پہ انشاءاللہ تعالی آج ہمارا موضوع بھی کیا ہے کہ واٹ آئی ایم لیونگ بیہائنڈ، میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہی ہوں. حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ایسے سفر کا راہی ہے کہ جس کی منزل بڑی قریب ہے. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ آنے والا کل ہی شاید ہمیں اس منزل پہ پہنچا دے، شاید آج ہی کے باقی بچے ہوئے گھنٹے یا دن. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آیت ہی کے ترجمے کی روشنی میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا نحن نحیی الموتا، بے شک ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ جائیں گے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم ایک روشن کتاب میں درج کرتے جا رہے ہیں. آیت تو بڑی مختصر ہے، ترجمہ بھی بڑا آسان ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے. پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہی کہ انا نحنو نحیی الموتا، تکرار ہے کس لفظ کی؟ ہم ہی نے، بے شک. یعنی بات پہ زور دیتے ہوئے کہا کہ بے شک ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو. اس انداز کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیونکہ جہاں یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا وہاں اکثریت جو تھی وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتی تھی. یہ الگ بات ہے کہ وہ قول سے بھی نہیں مانتے تھے، اور آج کے مسلمان اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے. یہ الگ بات ہے کہ زبان سے تو آخرت کی بات، مرنا، جنت، جہنم سب کی بات کرتے ہیں، لیکن رویے بتاتے ہیں کہ اس بات کا یقین نہیں کہ اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے اور پھر وہاں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور جو یہاں کیا ہوگا اس کی وہاں جزا یا سزا پائیں گے. کیونکہ انسان کا رویہ جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر کا عکاس ہوتا ہے. تو لہٰذا اس آیت کے حصے پہ ہم نے سوچنا ہے کیا کہ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے, اس مردے کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ آج میں جو زندہ ہوں کل مجھے موت آئے گی, اور موت فنا کا نام نہیں, موت ختم ہونے کا نام نہیں, بلکہ موت منتقلی کا نام ہے. انتقال کرتے ہیں ہم, ہم اس دنیا سے موو ہو کے ایک دوسرے جہان میں کھل جاتی ہے آنکھ. بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے ہاں کہ جب کسی کی موت ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں ہائے بیچارہ ختم ہو گیا. ختم نہیں ہوتا. کیا ہے, وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. سورۃ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے برزخ ہے, ایک پردہ آ گیا. جیسے ہی جیسے اس کمرے میں ہم بیٹھے اور ہم میں سے ایک ساتھی اٹھے اور یہاں سے اٹھ کے یہ ساتھ والے کمرے میں چلی جائے, ہماری نظروں سے غائب ہو گئی, ہمیں نہیں پتا وہ باہر ہیں یا چلی گئیں, ہمیں نہیں پتا وہ ریسٹ روم میں ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کسی سے فون پہ بات کر رہی ہیں, حالانکہ کتنی قریب ہیں ہم ان کے. صرف ایک یہ سیمنٹ کی شیٹ راک کی دیوار ہے اور ہمیں نہیں معلوم. ہاں, ان کے لیے ایک نیا جہان ہے. وہ اس کمرے سے نکلی, اس سے ایک بہت بڑے کمرے میں چلی گئیں, لیکن وہ وہاں موجود ہیں. اسی طرح یاد رکھیے, ہم دنیا میں جب آتے ہیں تو اس دنیا میں آ کے ہم جیسے ختم نہیں ہوتے. اس کو میں ایک مثال سے سمجھتی ہوں جس سے بات بہت آسان ہو جاتی ہے, اور جب مجھے پہلی دفعہ یہ بات سمجھ آئی تو اس کے بعد میرے دل سے موت کا ڈر ختم ہو گیا, الحمدللہ. جو ایک خوف آتا تھا نا موت کے نام سے, ایک وحشت آتی تھی قبر کے لفظ سے, وہ ختم ہو گئی. کیسے کہ کیسے ہم اس دنیا کو چھوڑ کے ادھر جائیں گے اور پھر اٹھیں گے اور پھر یہ سب ہوگا. تو آپ دیکھیے کہ اگر ہم اپنے اس دنیا میں آنے سے پہلے وقت کو تصور میں کریں, اپنا تو ہمیں یاد نہیں, لیکن آپ میں سے بہت ساری بہنیں مائیں بھی ہیں, 9 مہینے ایک بچے کو ماں کے پیٹ میں رکھنا کیا ہے؟ وہ ایک چھوٹی سی جگہ چند بالشت کی, ماں کا رحم, ماں کا پیٹ, اس میں بچہ رہتا ہے. کتنے دن رہتا ہے؟ مہینوں کے اعتبار سے رہتا ہے. اگر اس بچے کو شعور ہو تو وہ کیا سوچے گا, یہی ہے دنیا, کچھ گوشت, کچھ خون, کچھ پانی, کچھ نمی, ایک خاص ٹیمپریچر, اس کی دنیا وہی ہے. اگر اس دنیا اس پیٹ میں کوئی اس بچے سے کہے کہ تمہیں پتہ ہے پہاڑ بھی ہوتے ہیں, تو وہ کہے گا وہ کیا ہوتے ہیں, میں تو نہیں مانتا, میں نے تو کبھی نہیں دیکھے. آپ کے تمہیں پتہ ہے ایک بہت بڑی چیز سمندر کے نام پہ ہوتی ہے. تصور میں لائیں ذرا, وہ چھوٹے سی جگہ میں ایک بچہ جو سیدھا بھی نہیں ہوتا, گھوما ہوتا ہے, وہ اس لفظ کو سن کے ہمارا مذاق اڑائے گا نا, یا بے یقینی کا اظہار کرے گا کہ یہ میرے لیے بات قابل یقین نہیں. اب کیا ہوتا ہے, وہ اسی دنیا کا یوز ٹو ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا اس چھوٹی سی دنیا سے انتقال کرنے کا وقت آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ بیبی ڈیلیور ہو رہا ہے, بیبی پیدا ہو رہا ہے, بالفرض اس ماں کے پیٹ میں اس بچے کے ساتھ ایک اور بچہ بھی ہو, بعض دفعہ ہوتا ہے ٹوینس کی صورت میں, اور وہ بچہ جو اس کے ساتھ کئی مہینے سے ساتھ کھیل رہا تھا پیٹ میں, وہ اپنے سامنے اس بچے کو ماں کے پیٹ سے نکلتا دیکھے, تو کیا کہے گا, روئے گا کہ نہیں, خوش ہوگا کہ روئے گا, کہ آج میرا بھائی انتقال کر گیا. کیوں, آج کے بعد میں اس کو دیکھ نہیں رہا, ابھی تھا پھر پتہ نہیں کہاں چلا گیا, کھو گیا. اس کے لیے وہ چلا گیا, وہاں سے گیا, لیکن اس ایک بڑی دنیا جو اس ماں کے پیٹ سے آ گیا, اب اس دنیا کا تقابل کریں, کوئی تقابل بنتا ہے؟ یہ دنیا, یہ زمین, سورج, چاند, ستارے, آسمان, بادل, امریکہ, پاکستان, آسٹریلیا, کینیڈا, ذرا وسعتوں کا اندازہ لگائیے کہ اس کائنات میں کتنی وسعتیں ہیں. وہ ماں کے چھوٹے سے پیٹ سے نکلنے والا بچہ جس طرح اس دنیا کا ادراک نہیں کر سکتا, وہاں والا رو رہا ہے کہ آج میرا بھائی مجھے چھوڑ کے چلا گیا, اور دنیا میں لوگ خوش ہو رہے ہیں, بچہ پیدا ہوا, وہ کہتا ہے ہماری بہن کے بیٹا ہوا, وہ کہتا ہے میں ماموں بن گیا, وہ کہتا ہے میں خالہ بن گئی, وہ کہتی میں پھوپھی بن گئی, میں دادی بن گئی, ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. پھر بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا یہاں دل لگنے لگتا ہے, پھر اس کو شعور آتا ہے کہ واہ, یہ تو اس سے بڑی دنیا ہے, देखो इसमें तो मुझे और भी कई चीजें मिल रही हैं, वहां के पेट में तो कुछ भी नहीं था, वहां तो सिर्फ उसके खून से ताकत लेता था, यहाँ आते ही दूध मिल गया। माँ के पेट में कोई बच्चे से कहे तुम्हें पता एक चीज दूध होती है, और वो उसकी पूरी पूरी जितनी मर्जी तुम धारियां बनी हुई देख लो, बाल्टियां भरनी हुई देखो, तो उसको नामुमकिन लगेगा ना, लेकिन यहाँ आके वो सब कुछ देखता है, और चंद ही साल के अंदर वो इस दुनिया का आदी हो जाता है, और जब बड़ा होता है फिर इस दुनिया में दिल लगता है, फिर इस दुनिया से दिल लगता है, फिर हर चीज़ यहाँ की अच्छी लगती है, फिर दिल चाहता है मैं ये भी देखूँ और मैं वो भी देखूँ, मैं वहाँ भी जाऊँ और मैं यहाँ भी जाऊँ। नतीजा क्या होता है कि फिर इंसान का यहाँ से जाने को दिल नहीं करता। वहाँ 9 माह रहा, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगा लें तो 70 साल रहता है इंसान, और जब इस दुनिया से दिल लगता है, जब इसकी रौनकें लुभाने लगती हैं, तो फिर यहाँ से जाने का वक्त आ जाता है। फिर एक और रुखसती, एक और जुदाई के दिन के आगे चलो, अब तुम्हारे लिए इस दुनिया से एक बड़ी दुनिया है। जिस तरह माँ के पेट से इस दुनिया की कोई निस्बत मिलती ही नहीं, इतना बड़ा फर्क है, इसी तरह फिर इस दुनिया से आगे इंसान एक और दुनिया की तरफ चलता है। हम यहाँ रो रहे होते हैं हाय फुलां मर गया, लेकिन वहां पहले से मौजूद लोग जो जिंदा वहां पहुंच चुके थे वो खुश होते हैं कि आज हमारा एक और रिश्तेदार हमारे पास आ गया। नेक था तो नेक खुश हो रहे हैं उसको देख के, क्योंकि जन्नत में जाके उनके साथ उसकी रूह मिला दी जाएगी इल्लीजीन में। वमा अदरा कमा इल्लीजून किताबुम मरकूम यशहदुहुल मुकर्रबून। और तुम्हें क्या मालूम कि वो इल्लीजीन क्या है? वो एक दफ्तर है जहां नेक लोगों की रूहों को रखा जाता है, और अगर बुरा है तो फिर वो क्या है, वो सिज्जीन में दाखिल कर दिया जाता है। वमा अदरा कमा सिज्जीन किताबुम मरकूम, वो भी एक दफ्तर है, वो भी एक अमाल नामों को रखने का रजिस्टर है, और वहां किन की रूहें हैं जो बुरे काम करते हैं। तो अजीज साथियों, हम सबको इस चीज का यकीन आना चाहिए कि हम इस दुनिया से जाने के बाद एक नई दुनिया में जिंदा कर दिए जाते हैं। हमारी मौत से लेके क्यामत तक का वक्त हमें सुला दिया जाता है, इसको बरज़ख कहते हैं। शऊर मौजूद होता है, जन्नत के मलाइक हैं तो जन्नत देख लेता है इंसान पहले, जब इंसान की रूह जाती है। सूरत आराफ की आयात है बड़ी तफसील से, जो इस वक्त हमारा मौजू नहीं, वरना मैं उस पर कुछ मजीद बात करती, लेकिन खुलासा क्या है कि जब इंसान की रूह निकलती है जिस्म से, बड़े प्यार से नेक इंसान की रूह को निकाला जाता है, और फिर उसको जन्नत के कफन के अंदर लपेटा जाता है। फरिश्ते आते हैं और कफन लेके आते हैं, खुशबू आ रही होती है, और उसके अंदर लपेट के फिर कहते हैं चलो इसको आसमान पे लेके चलते हैं, इसको सैर करवा के लाए। इस तरह वो सब मिलके उसके साथ जाते हैं, पहले आसमान के दरवाजे पे जाके वहां उसके लिए दरवाजा खटकाया जाता है, फिर पूछा जाता है ऊपर से कौन आना चाहता है। उसका दुनिया में जो मारूफ नाम होता है वो नाम लेके बताया जाता है, ये फलां बेटे फलां की रूह है। खुशी खुशी दरवाजे खुल जाते हैं, और उसके बाद पहले आसमान के फरिश्ते भी साथ हो लेते हैं, और इसी तरह सातों आसमानों के दरवाजे खुलते जाते हैं, और वह बंदा अपने रब के सामने आ जाता है, अल्लाह के अर्श के सामने, और फिर वो रूह सजदे में चली जाती है जब तक रब चाहे। क्यों? कि जिंदगी में आदत थी सजदों की, जिंदगी में आगे दिल में खुशू था, अल्लाह के आगे झुकना अच्छा लगता था, वहां भी झुक जाता है। फिर अल्लाह तआला कहते हैं सर उठाओ, फरिश्तों इसका नाम इल्लीजीन में लिख दो, मैं इससे राजी हूँ, मैंने इसको जन्नत देने का फैसला किया, लेकिन जाओ जरा इसको जन्नत की थोड़ी सी सैर करवा के लाओ। जैसे आप कोई चीज़ लेना चाहें तो उससे पहले एक टूर करते हैं ना, चलो एक फ्री ट्रायल करवाओ, फिर उसको वो जन्नत दिखाई जाती है, और जब वो जन्नत देखता है तो कहता है अगर मुझे ये मालूम होता कि मेरे रब ने मेरे लिए ये कुछ तैयार किया तो मैं वो नेकियां भी कर लेता जो मैंने छोड़ी हुई थी, और मैं वो गुना भी ना करता जिन्होंने मुझे इसके दर्जों को कम करा दिया। लेकिन जन्नत तो किसी ने देखी नहीं। फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुनिन जज़ाअ बिमा कानू यअमलून। कोई नफ्स नहीं जानता उसकी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह ताला ने तैयार क्या किया। फिर वो मिलती है, फिर वहां जो पहले से लोग मर चुके होते हैं कोई रिश्तेदारों में या दोस्तों, वो भी रूहें वहां होती हैं, फिर एक दूसरे को मुलाकात होती है। जैसे इंसानों में तबीयत के अख्तलाफ है ना, कुछ बड़े जल्दबाज होते हैं, घबराए रहते हैं हर वक्त, कुछ बड़े कूल ठंडे मुतमईन, इस तरह रूहें भी होती हैं। وہ جو کچھ فرینڈ جلدی جلدی پوچھتی ہیں, اچھا فلاں کا کیا حال ہے, اچھا فلاں کیسا ہے, دنیا والوں کا حال. وہ کیا پوچھتے ہیں, کتنی فیکٹریاں ہیں, کتنی گاڑیاں لے لیں, کیسا گھر بنا لیا, نہیں اس کے دین کا حال پوچھتی ہیں. اور اگر وہ اچھا حال میں ہو تو وہ کہتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ تو بہت اچھی ہو گئی, اس نے تو قرآن پڑھنا شروع کیا. مثال دے رہی ہوں آپ کو, وہ تو بڑا نیک ہو گیا, اس نے تو 5 وقت کی نماز شروع کر دی. تو پھر وہ روحیں خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں چلو جلدی آئے یا دیر سے آئے, آئے گا ہمارے پاس. اور اس کے بعد پھر اسی طرح کی گفتگو اور بہت ساری باتیں. جنت جروح جاتی ہے, وہ کسی کو ڈھونڈتی ہے, کہتی ہے مجھے فلاں نہیں دکھ رہا تم میں سے, یعنی جو اس سے پہلے فوت ہو چکا ہوتا ہے ان کے ساتھیوں میں سے, وہ نہیں دکھ رہا. تو جو جنت میں جاتا ہے وہ کسی انسان کو ڈھونڈتا, کہتا ہے فلاں نہیں مل رہا مجھے جو اس سے پہلے مر چکا تھا. تو لوگ کہتے ہیں, جنت کی روحیں کہتی ہیں وہ تو یہاں نہیں آیا, یعنی ان کو نہیں پتا ہوتا اس کے بارے میں کچھ. تو پھر وہ افسوس کرتے ہیں کہ افسوس وہ صرف جین کے گھڑوں میں گر چکا ہوگا. اس طریقے سے گفتگو ہوتی ہے. پھر اس کی روح کو واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ اب دوبارہ اس کی روح کو اس کے جسم میں ڈال دو, کیونکہ میرا وعدہ ہے کہ یہ جنت ملے گی لیکن قیامت کے بعد. ابھی اس کا قبر کا مرحلہ باقی ہے, ابھی وہاں کے حساب کتاب ہے. جاؤ اس کی روح کو واپس ڈال دو. پھر اتنے ہی پیار سے محبت سے اس کی روح کو رخصت کیا جاتا ہے, جیسے کسی بڑے اچھے مہمان کو ہم رخصت کرتے ہیں. اور جب اس کو واپس لاتے ہیں تو اس کا دنیا میں کفن دفن ہو چکا ہوتا ہے اس وقت. اتنی جلدی یہ سارے مرحلے طے ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اس کا نماز جنازہ تیار ہوتا ہے. پھر وہ فرشتے جو اس کے ساتھ آتے ہیں وہ سب اس کی جنازے میں شامل ہو جاتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ جس کو درجہ دینا چاہے. اور پھر اس کے بعد قبر کے حساب اور کتاب کے مرحلے. اس کے برعکس جو شخص برے کام کرتے ہیں ان کو جب مرتے ہیں تو جہنم کے بدبودار کفن میں لپیٹا جاتا ہے, کہ جس کی بدبو اگر دنیا میں آ جائے تو کوئی سانس نہ لے سکے. اور اسی طرح پھر کوشش کرتے ہیں چلو لاؤ اس کو بھی آسمان پہ لے کے چلتے ہیں, لیکن ابھی پہلے ہی آسمان پہ آتے ہیں پوچھتے ہیں, پوچھا جاتا ہے کون اوپر آنا چاہتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں اور فلاں. تو کہتے ہیں نہیں, اجازت نہیں ہے. سورۃ اعراف کی آیت ہے لا تفتح لهم ابواب السماوات, ابواب السما نہیں کھولے جاتے ان کے لیے آسمانوں کے دروازے. اور ان کا جنت میں جانا کتنا ناممکن ہے, حتی یلج الجمل فی سم الحیات, جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا ممکن نہیں, اس طرح اس کا جنت میں جانا ممکن نہیں. ڈال دو واپس. تو ان سارے مرحلوں سے گزرتے گزرتے بالآخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ انا نحن نحیی الموتا, مردے زندہ ہوں گے. اور یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. یہ ایک خبر ہے جو مستقبل کی دی گئی ہم سب کو الرٹ کرنے کے لیے کہ اپنی موت کے بعد کے لیے تیاری کر لو. ولدن زور نفس ما قدمت لغت, سورۃ حشر کی آخری آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور چاہیے کہ ہر نفس دیکھ لے, غور کرے, نظر رکھے اس پہ کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے. تو عزیز ساتھیو, ہم سب یہاں اپنے اس آنے والے کل کی تیاری کے لیے بھیجے گئے جس کو فنا نہیں, جو آ گیا تو ٹلے گا نہیں. یہ دنیا دار الجزا نہیں, یہ دار العمل ہے, یہ امتحان کا کمرہ ہے. ہم سب امتحان کی حالت میں ہیں. مختلف پرچے ہیں اس میں, نماز کا پرچہ ہے, روزے کا پرچہ ہے, حج کا پرچہ ہے, اخلاق کا پرچہ ہے, معاملات, لین دین, تجارت, معیشت, پھر ہماری ذمہ داریاں. ہمارا ہر بچہ امتحان کا ایک پرچہ ہے. ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے اس کو کہاں استعمال کیا, اس کی کتنی قدر کی. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, پھر البتہ ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ہم اس دنیا میں کیا کرتے ہیں, کہاں کرتے ہیں, ایک ایک چیز کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے. اس کی خبر آیت کے اگلے حصے میں ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, یہ ہے وہ حقیقت جس نے انسان کی آنکھیں کھولنی ہیں. بہت بڑی خبر ہے. اور وہ کیا, کہ ہم उसकी हर बात को लिख रहे हैं। कौन सी? जो उसने अपने आगे भेजी। आगे कैसे भेजी? आज हम काम करते हैं, उसका असर कल देखेंगे। अच्छा काम कर रहे हैं तो कल अच्छा असर मिलेगा, यानी नेकियों की सूरत में या बदियों की सूरत में। और हम सब इस नजरिए से बड़ी अच्छी तरह आगा है। हर एक को पता है, अच्छा कल देख, कल के लिए तैयारी कर लो। वल तंजोर नफसुमा कद्दमत लिगत, ये तो है कद्दमो। लेकिन एक और चीज भी हम तुम्हारे लिए लिख रहे हैं, और वो क्या है? वह आसारा हूं, पीछे क्या छोड़ रहे हो। क्या इस बात को सुन के आपके अंदर कोई हरकत पैदा हुई? कितनी दफा ये आयत मैंने भी पढ़ी और आपने भी पढ़ी होगी, और कितनी दफा हमने इस सूरत के खत्म किए और ये आयत हमारी जुबान पे आई, लेकिन हम नहीं चौंके, हमारे कान नहीं खड़े हुए, हमारा दिल खौफ ज़दा नहीं हुआ। और इसके बरक्स एक खबर आ जाए ना कि आपके घर की हर चीज नोट हो रही है, मुसलमानों के ईमेल्स चेक हो रहे हैं, उनके फोन नंबर्स चेक होते हैं, एक अफवाह फैल जाए सिर्फ, फिर आप देखते हैं मुआशरे में उसका असर क्या होता है। अपनों पे भी लोग शक करते हैं। हल्का सा आपको ये अंदाजा हो जाए ना कि मैं जब अपने घर से निकलती हूँ तो मेरे घर के सामने दरख्त के नीचे एक शख्स बैठा है जो मेरी हर हरकत को देख रहा है, क्या करते हैं? खौफ आता कि नहीं? ये क्यों ताड़ रहा है? ये हर वक्त इधर क्यों होता है? एक और हाथ में अगर उसके कागज पेंसिल भी हो तो आप कहेंगे ये न जाने किसका एजेंट है। हम छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी हकीकत कि नक्तुबु मा कद्दमू, हम तुम्हारी हर चीज लिख रहे हैं। क्योंकि जुबानी बात को मानता नहीं है ना, और लिखी हुई चीज तो कल दिखा दी जाएगी। इंसान को इस चीज की शिद्दत को महसूस करने की जरूरत है कि मेरी हर चीज नोट हो रही है, मैं अंडर इन्वेस्टिगेशन हूं, मैं किसी की कस्टडी में हूं। लोग एयरपोर्ट से गुजरते हैं ना तो उनका दिल अंदर से बंद हो रहा होता है, अल्लाह खैर करे चेकिंग होगी, INS से गुजरेंगे खैर हो, कस्टम है पता नहीं क्या होगा। हालांकि क्या है, हम जैसी तो हैं बेचारे, कुछ मशीनें उनके पास होंगी, 10 मशीनों में से भी आपको गुजार लें क्या फिर भी यकीनन उन्होंने हर चीज देख ली? कैसे हो सकता है? फिर यहीं से चोर डाकू भी गुजरते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन उस रब के स्कैनर्स बहुत बड़े हैं कि जो इंसान की जुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज नोट कर रहा है। कहाँ लिखा है? सूरह काफ में आता है, मा यल्फिजु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। जो एक लफ्ज भी तुम्हारी जुबान से निकलता है उसको लिखने वाला फौरन लिख लेता है। कोई लिख सकता? ये मैं बोल रही हूं, अगर आप में से कोई नोट्स ले तो क्या मेरा एक एक लफ्ज लिख सकता? और कोशिश करेगा तो 10 दफा पीछे से आगे जाएगा, रिकॉर्ड की भी चीज को सुनेगा, फिर लिखेगा, फिर भी बुरा नहीं लिख सकता, कहीं ना कहीं जरूर अटकेगा। लेकिन कल कयामत के दिन इंसान की जुबान का बोला हुआ एक एक लफ्ज रिप्ले कर दिया जाएगा कि देखो ये तुम बोलते थे। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये जो बात है ना कि नक्तुबु मा कद्दमु, ये ऐसे लगता है कि जैसे हमें से हर एक एक किताब लिख रहा है। इसका नाम है किताब जिंदगी। हर सुबह होती है ना तो उस किताब का एक सफा हमारे सामने खोल दिया जाता है, बंद ही खोल दिया सफा, बिल्कुल ब्लैंक सफेद कागज है। सारा दिन हम उसमें लिखते रहते हैं। क्या लिखते हैं? जो हम बोलते हैं वो उसमें लिखा जा रहा है, जो हम सुनते हैं वो उसमें लिखा जा रहा है, जो हम देखते हैं वो उसमें लिखा जा रहा है, जो हम सोचते हैं वो उसमें लिखा जा रहा है, जो हमारे दिल में इरादे बनते हैं, ख्याल आते हैं, एक एक चीज लिखी जाती है। किसी का सारा दिन सो सो के गुजरता होगा, लिखा जा रहा है ये इतने घंटे से इतने घंटे सोया। किसी का लिखा जाता होगा एक घंटा इसने फोन पे बात की और 101 गिफ्तें कर ली। किसी का लिखा जाता होगा ये 3 घंटे शादी में रहा और इसने 50 लोगों के बारे में अपनी राय का इजहार किया। कभी गौर तो करके देखें, हम खुद सिर्फ एक दिन के लिए शौर के साथ इस काम को करने लग जाए ना तो मेरा ख्याल है कि हमारी जुबानें बंद हो जाएं, हमारी आंखें बंद हो जाएं, हम कानों में उंगलियां दें और अपने घरों में सुकून पकड़े, ना किसी से मिले, क्यों? खतरा बहुत है। यहां तो जान का खतरा है ना, लेकिन वहां तो ईमान का खतरा है। और कल क़यामत के दिन ये एक एक लिखा हुआ सामने आएगा, फमन यअमल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी सामने रख दी जाएगी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब ये आयत नाजिल हुई हमारा खुशी के मारे बुरा हाल था, अच्छा एक एक नेकी मिलेगा बदला, बहुत खुशी हुई। लेकिन अगली ही आयत ने हमारी सारी खुशी खत्म कर दी, फमन यअमल मिसकाला ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जिसने जर्रा बराबर बुराई भी की होगी उसकी वो भी खोल के रख दी गई। इतने जबरदस्त इम्तिहान में हम बैठे हैं, क्या फिर कोई इंसान अपनी जुबान को बेलगाम कर सकता? पहले सोचेगा फिर बोलेगा, 10 दफा सोचेगा फिर 1 दफा बोलेगा। और अगर नबी सल्लम की एक हदीस पे अमल कर लिया तो फला पा जाएगा, और वो क्या कि नजा मनसमत, 3 लफ्ज है, नजा निजात पा गया, मन जो कोई, समत खामोश रहा। फिर इंसान को उन लोगों पे रश आएगा जो बोलते ही नहीं। कुछ लोग होते हैं अब कहीं भी उनको मिल ले हल्की सी बात, प्यार की, मोहब्बत की, फिर खामोश, जितनी बात पूछी खामोश, बता दिया खामोश। और कुछ लोग ऐसे होते हैं चुप ही नहीं करते, उनका दिल करता है मुझे सुनो, मेरे खुद नुमाई है ना, मेरी बात सुनो, वो आ जाए तो सब चुप हो जाते हैं। लेकिन कल क़यामत के दिन जब एक एक लफ्ज सामने आएगा तो इंसान सोचेगा कि मैंने क्या किया, ये क्या लिखा जाता है, हर रोज हमारे दफ्तर में क्या क्या लिखा जा रहा है, शाम तक हम उस सफ़े को लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। फिर जब सो के अगले दिन उठते हैं तो उसका अगला सफ़ा खुल जाता है। हर दिन यही हो रहा है, हर दिन यही हो रहा है। वह इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, बेशक तुम्हारे ऊपर किरामन कातिबीन है। सूरह इन्फितार की आयत 30 पारे में, एक दाई तरफ और एक बाई तरफ, यालमून मा तफ़अलून, तुम जो करते हो उनको पता, और उसी की बुनियाद पे फैसले होंगे। किसी पे जुल्म नहीं होगा, किसी की कोई झूठी शिकायत नहीं लगा सकता। हर चीज क़यामत के दिन खोल के रख दी जाएगी। ये है किताब जिंदगी जो आज हम खोले बैठे हैं ना, एक दिन ऐसी हमारी जिंदगी का आएगा कि हमारी उस किताब का वो आखिरी दिन होगा, हमें नहीं पता होगा, लेकिन नहीं मालूम होगा। ऐसी ही सुबह होगी, इसी तरह सूरज निकलेगा, ऐसे ही दुनिया के काम धंधे शुरू होंगे, लेकिन मेरी किताब जिंदगी का वो आखिरी दिन होगा। और किसी का बीच दिन के अंदर छीन लिया जाएगा, किसी का जोहर पे, किसी का असर पे, किसी का शाम, किसी को हो सकता है रात तक, और किसी का तो सुबह सूरज चढ़ते ही बिस्तर से मुर्दा हालत से पाए गए, और वो किताब जिंदगी बंद। हमें से किसी को नहीं पता कि हमारे पीछे कितने सफ़े हैं। हम अपने गुजरे हुए दिन गिन सकते हैं, जितने सफ़े गुजर चुके हैं उसको गिन लें एक मिनट में, कोई मुश्किल ही नहीं। अपने हर साल और हर साल को 365 जैसा 8 जो उसके दिन ने जर्ब दे दी, अभी पता चल जाएगा। सालों को गिरे दी, दिनों को भी दे सकते हैं, फौरन पता चलेगा। लेकिन हम में से किसी को ये नहीं पता कि पीछे कितने हैं। और फिर उस दिन हमारा नाम बदल जाएगा, हम वो नहीं रहेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हमें छोड़ती है ना, वो हमारा नाम है। आज मेरा नाम है, कल मेरा नाम एक ही रहेगा, मैयत। कभी किसी की जान जाने के बाद आपने उसका नाम सुना? मिसाल है कि किसी का नाम ले ले, मिस आयशा, कोई भी नाम ले, आयशा थी, आयशा का क्या हाल है, आयशा बीमार है, आयशा ठीक है, आज मर गई, आयशा मर गई, ये आखिरी जुमला है। उसके बाद क्या फोन करके पूछते हैं, मैयत का गुसल कब है, मैयत को दफनाना कब है? कोई कहता है आयशा को कहाँ दफनाना है, कभी सुना आपने? सबसे बेवफा चीज हमारा नाम है, जिसके लिए हम मरते हैं, जिस नाम की जंग लड़ते हैं हम लोगों के साथ। अना, ईगो, नफ्स, मेरी जात, मुझे मानो, मुझे बड़ा बनाओ, मुझे नीचे की बिठाया, मुझे ऊपर बिठाते, मुझे इज्जत नहीं दी, मुझे ये कह दिया, उसकी जरूरत, सारी जिंदगी अपने नाम की लड़ाइयाँ लड़ते हैं। नमाज में कहते हैं अल्लाह ताला को दिन में 17 बार वताला जद्दुका, अल्लाह शान तेरी बुलंद है, और जाय नमाज तय करते ही जो सारी लड़ाई है वो अपनी अपनी जान की है। मेरी शान, मुझे मानो, मुझे बड़ा मानो, फितने नफ्स की खत्म हो जाएगी ये जान, और हम उस किताब को बंद कर चुके होंगे। आपने कोई वो दिन याद है जब आप इम्तिहान देते थे? तालिब इल्मी का दौर याद कीजिए, 3 घंटे मिलते थे, 5 या 6 सवाल करने होते थे। आज का भी ऐसे कुछ होगा, लिखते हैं लिखते हैं, आप जरा वो आखिरी 15 मिनट सोचें जो पेपर छीनने से पहले के होते हैं। कोई बुलाए उस वक्त आपको, आप उसकी बात सुनते, फोन आया आप अटेंड करते, कहते नहीं मुझे लिखना लिखे, और उस वक्त दिमाग यूं तेज काम करता है कि शायद वो वक्त पहले नहीं आता। और फिर भी मैंने देखा कि अमूमन मेरा तो ऐसे ही होता था कि आखिर में एग्जामिनर को पेपर छीनना पड़ता था और आखिर में एक लाइन लग जाती थी कि मुझे कुछ और लिखना है, और मैं अपने अक्सर पेपर पे नोट लिखती थी कि अभी मेरे जहन में बहुत था, मुझे लिखना था, लेकिन वक्त खत्म है, टाइम्स अप, वक्त खत्म हो गया। हत्ता इजा जा हदकुमुल मौत, यहां तक कि जब तुम में से किसी को मौत आ जाती है, खत्म। मिन्नतें कर लो, समाजत कर लो, लौला खरतनी ला जलिन करीब, मुझे थोड़ी सी मोहलत क्यों नहीं दी? क्यों भाई, क्या करना चाहते थे? मरनेरा क्या कहता है, मुझे मोहलत दे दो, फरिश्ते अभी थोड़ा और जीना है। क्यों, आप सोचो जरा, क्यों इंसान मोहलत मांगता? जवान बच्चियां उनकी शादी कर लो, घर बन रहा जरा उसको सजा लो। नहीं, 2 बातें होंगी, फअसद्दक व अकुम मिनस सालिहीन, सूरह मुनाफिकून की आयत है, सदका खैरात कर लो, बड़ा माल है, ढेर लगे हुए हैं, तिजोरियां, बैंक बैलेंस, जेवर, थोड़ी मोहलत दे दो कि इसको जाके अल्लाह के रास्ते में सदका करो। क्योंकि मैं तो संभालता था बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अब मुझे पता चल गया कि कोई मेरे काम नहीं आएगा। इन्होंने तो न जाने मेरे लिए कोई अच्छी बात करनी भी है कि नहीं करनी, लेकिन मैं अपने हाथ से इसको सदका कर दूं। और दूसरा क्या, वह अकुम मिनस सालिहीन, मैं नेक बनना चाहता हूँ। बड़ी पोस्टपोन नेकियां थी, बड़े इरादे किए हुए थे नेकियों के, बस अब मैंने बहुत नेक हो जाना, लेकिन फिर शैतान कहता था नहीं अभी नहीं, थोड़ा और, जरा अभी तो जवान हो, थोड़ा बड़े हो लो, अच्छा भी हज भी नहीं किया, हज करेंगे तो छोड़ देंगे गुनाह, और नमाज पढ़ लो, हाँ अभी वो जरा सर्दी कम हो जाए फिर नमाजें शुरू करेंगे, वजू करना मुश्किल लगता, हिजाब कर लो, हाँ जरा गर्मी कम हो ले फिर करेंगे, अभी दम घुटता। सारी जिंदगी नहीं तावीलात में गुजर जाती है, और मैं देखती हूँ जब रमजान आने वाला होता है ना, तो शैतान दिल में डालता है जो गुनाह करने हैं कर लो, रमजान आ रहा देखना सारे बख्शे जाएंगे। इसीलिए तो हम बेचैन होते हैं रमजान के फजाइल सुनने के लिए, मसाइल नहीं सुनना चाहते, फजाइल सुनना चाहते हैं। क्यों, कि जो करना है कर लो, कुछ भी कोई कर ले, लेकिन व नक्तुबु मा कद्दमु, हम लिख रहे हैं जो उसने आगे भेजा। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 13 से 15 तक अल्लाह ताला ने इस हकीकत को बहुत ही प्यारे तरीके से खोला, आपके सामने रखूंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व कुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुकिह व नुख्रिजु लहु यौमल क़ियामा किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, हर इंसान की गर्दन में हमने उसका नामे आमाल लटका रखा है और हम उसको क्यामत के दिन निकालेंगे, नुखरिजु लहू, उसके लिए निकालेंगे, किस शक्ल में वो होगा, किताबें, एक किताब, कौन सी किताब, जिंदगी, कैसी होगी उस वक्त, यल्काहु मंशूरा, खुला हुआ पाएगा, नशर हो जाएगी, कहते ना नशर व इशात, हशर नशर हो गया, खुल जाएगी सबके सामने, तन्हाई के किए हुए गुना सब देख रहे होंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स, बड़ी बड़ी स्क्रीनें, अब तो क्या मुश्किल है, अब तो मुझे ऐसे लगता है कि बस यही मुश्किल लग रहा है कि ये कंप्यूटर खोलो और उसमें से कोई हजारों मील दूर बैठा इंसान खुद निकल के आ जाए। यकीन करें, जिस तेजी से वक्त गुजर रहा है, आप एक लफ्ज बोलते हैं यहां पूरे ग्लोब पे सुना जा सकता है, आप सोच सकते हैं एक लफ्ज आपका बोला हुआ, تو جو اللہ اس دنیا میں رہتے ہوئے پوری پورے گلوب پہ سنا سکتا ہے, وہ میدان معاشر کے ہر بندے تک وہ بات کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ کھولو اس کو, پڑھو. وہ جو موت کی صورت میں بند ہوئی تھی نا کتاب زندگی, وہ کھلے گی میدان معاشر میں. تصور میں لائے ذرا, میدان معاشر ہم کھڑے ہیں اور فرشتے ہماری کتاب لا رہے ہیں, یہ لو کھلی ہوئی ہے, اور کیا کہا جائے گا؟ کسی کو کوئی اس کو پڑھ کے سنا ہے؟ نہیں. اقرا کتابک, اپنی کتاب کو خود پڑھو. اقرا کتابک, اپنی کتاب کو پڑھو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج کے دن تم اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہو. کتنے حساب لیتے ہیں ہم دنیا میں دوسروں کے, کون کیا کر رہا ہے, کس نیت سے کر رہا ہے, کس ارادے سے کر رہا ہے, اس کے اندر کی بات کیا ہے, اس کے باہر کی کیا ہے. وہاں کہا جائے گا تم خود اپنا لے لو, اور آپ کو معلوم ہے کہ خود اپنا حساب لینا سب سے مشکل ہے. کوئی آپ کو انجیکشن لگا دے, لگ جائے گا. آپ کو کوئی کہنا خود کو انجیکشن لگاؤ, کبھی نہیں لگا سکتے. اس نے کہا جائے گا خود اپنا ریزلٹ اناؤنس کرو. کتنا مشکل لمحہ ہوگا. اور اس کی بنیاد پہ پھر دو طرح کے لوگ, من اہتدا فانما یہتدی لنفسی, جس نے ہدایت پائی آج اس کے نفس کو اس کا فائدہ ہو گیا. جس نے زندگی میں اس ہدایت کو پکڑ لیا, اس کتاب ہدایت کو اپنی زندگی میں وہ لے آیا, آج اس کو اس کا فائدہ ہوگا. آج پتہ چلے گا کہ جس چیز کی طرف لوگ مجھے بلاتے تھے وہ سچی دعوت تھی. اور اس کے برعکس, وَمَنْ دَلَّا فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا, اور جو بھٹکا رہا, راستہ گم کر کے جیا, گم راہ ہوا, اس کی گمراہی اس کے سر پہ. نہ ماں بیٹے کے کام آئے گی, نہ بیٹی ماں کے, نہ باپ بیٹی کے, نہ شوہر بیوی کے, کوئی نہیں. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. جس آدمی بھاگے گا, کہاں لکھا یہ سورۃ عبس کی آیتیں, جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے, کیوں بھاگ رہے ہوں گے؟ کہ کوئی مجھ سے میری نیکی نہ مانگ لے. دیکھ رہے ہوں گے, یو بس کرو نہ ہوں, ایک دوسرے کو دیکھے دکھائے جائیں گے لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. ولا یس الو حمیم حمیما, کوئی گہرا دوست کسی دوست کا حال بھی نہیں پوچھے گا. گرم جوش, حمیم کہتے ہیں گرم جوش دوست کو, کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں عربی میں حمیم. یعنی وہ دوست جو دنیا میں محبتوں کے دعوے کرتے تھے, کوئی کام نہیں آئے گا. اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا, ولا تزیرو وازرتم وزر اخرى, اور نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا, بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا. ہر بندہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پھر رہا ہوگا, دل چاہے گا پھینکو. سورت فاطر کی آیتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص کسی کو بلائے کہ آؤ میری مدد کرو, تب بھی کوئی نہیں آئے گا, کیونکہ ہر ایک کو تپنی پڑی ہے کہ آج میرے ساتھ کیا ہوگا. نفسی نفسی, ہائے میری جان, ہائے میری جان بچ جائے. اس دن مجرم کیا چاہے گا؟ کہ کاش آج میرے عذاب کے بدلے اللہ میرے بیٹے کو آگ میں ڈال دے. سورہ معارج کی آیتیں کھول لیے. یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, اسے مجرم چاہے گا کاش میں اپنے آج کے عذاب کے بدلے میں بیٹے کو آگ میں ڈال دوں, میں خود بچ جاؤں. آنکھیں کھولنے والا وہ دن ہے. آج جن محبتوں کے نام پہ ہم گناہ کرتے ہیں اور ان کے گناہوں پہ خاموش رہتے ہیں مصلحت کے نام پہ, کیا کریں؟ پھر اولاد ہے, پھر کیوں نہ مانیں, پھر کیا کریں اور کیسے کریں؟ کل قیامت کے دن شکل دیکھنے کے روادار نہ ہوں گے کہ چلے جاؤ, تمہاری وجہ سے تو ہم پہ آج عذاب آ رہا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, انسان اس حقیقت کو محسوس کر لے نا تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو احساس تنہائی شروع ہو جاتا ہے دنیا میں. بعض دفعہ لوگ دیکھتے ہیں کسی کو, اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا, مثلا کسی کی اولاد نہیں, تو لوگ کہتے ہیں ہائے اس کے بڑھاپے میں اس کا خیال کون رکھے گا. محسوس ہوتی ہے نا تنہائی. بیوی ہے یعنی عورت ہے, اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو لوگ کیا سوچتے ہیں, ہائے بڑھاپے میں کون اب اس کے ساتھ ہوگا, اس کے دکھ سکھ کا ساتھی نہیں رہا. اگر غور سے دیکھا جائے نا تو ہم میں سے ہر ایک ویسے ہی تنہا ہے. جیسے دنیا میں تنہا آئے ویسے تنہا جاؤ گے, اور وہاں جا کے پھر اپنی زندگی کے معاملے دیکھنے پڑیں گے کیا کرتے ہیں. کوئی کسی کی امید نہ رکھے, کوئی کسی کا خیال نہ رکھے, پھر اس دن ہر عمل کا بدلہ کھول دیا جائے گا. یوم توعدون لا تخفى منکم خافیا, جس دن پیش کر دیے جائیں گے اور کوئی چھپی ہوئی چیز نہ ہوگی. دنیا میں تو انسان کتنے پردے ڈالتا ہے اپنے اوپر, لوگوں کو بس میری اصل نہ پتہ چلے. اور ہم بھی لوگوں کو ان کے ظاہر پہ قیاس کرتے ہیں, اور ظاہر ہی کرنا چاہیے. ہم میں سے کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ کوئی کسی کے معاملات کو جا کے دیکھے, لیکن اس دن تو کھل جائیں گی. اور پھر فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, اور وہ جس کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تصور میں کریں ذرا اس شخص کا حال, پاس ہو جائے, فرسٹ آ جائے, اے گریڈ مل گیا, خوشی خوشی لوگوں کو دکھائے گا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَ, آؤ لوگوں دیکھو, خوشی سے دیکھو, یہ ہے میرا نام اعمال. جیسے بچہ فرسٹ آتا ہے نا تو گھر میں آ کے خوشی خوشی دکھاتا ہے کہ ممی میرا یہ دیکھ لو, میں فرسٹ آیا ہوں. اب عموماً ایسے بندے سے لوگ پھر پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں, انٹرویوز ہوتے ہیں, اخباروں میں خبریں آتی ہیں, اتنے اچھے نمبر کیسے آ گئے, کیسے پڑھتے تھے, کیا معمولات تھے. تو لگتا ہے کہ جیسے اس جنتی سے بھی پھر لوگ پوچھیں گے کہ اتنے اچھے نمبر کیسے آ گئے. ہاں مکرا و کتاب دیا, تم دکھا تو رہے ہو, یہ بتاؤ کتنے اچھے نمبر کے آئیں گے, کیا کہے گا جواب میں. ایک لمبی لسٹ نہیں کیوں کی, نماز پڑھتا تھا, قرآن پڑھتا تھا, سارا سارا دن کرتا تھا کام, نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی. کیا کہے گا, ایک جملہ, صرف ایک جملہ, اور وہی ہے جملہ جو واقعی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیا, میں اس یقین کے ساتھ جیتا تھا کہ میں اپنے حساب سے ملاقات کروں گا. بس اس نے میرا ٹریک سیدھا کر دیا. جس کو یہ یقین آ جاتا ہے پھر یہ ممکن ہے کہ وہ نماز کے وقت میں سویا رہے, پھر اس کو ممکن ہے کہ اس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا جائے, یہ ممکن ہے کہ وہ لوگوں کا پوسٹ مارٹم کر دے, ان کی برائیاں کرنا شروع ہو جائے. کبھی نہیں. حساب کا یقین کہ کل مجھے اس کو بولنا ہے, اس کا بدلہ ملے گا, اور لہذا انی ظننت انی ملاق حسابیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اس نے ایک کام کیا, اس کو کتنے درجے ملے. فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَة, وہ دل پسند زندگی میں ہوگا, ایسی زندگی جیسی وہ چاہے گا. ہم کہتے ہیں ہائے سچی, ایسی جیسی وہ چاہے گا. اور یہ ذکر قرآن پاک میں بہت جگہ آتا ہے, لَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ, ان کے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو ان کو پسند ہے. پڑھتے ہیں نا جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو ہم چاہیں گے. وہ شعر بھی ہے نا علامہ اقبال کا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب آپ سوچتے ہیں کہ کتنا خوش قسمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ پوچھے بتا تو کیا چاہتا ہے, لیکن ہم اس کی وجہ نہیں جان پاتے. اور وہ وجہ کیا ہے, کس کو وہاں کی زندگی اپنی پسند کی ملے گی, جو اس دنیا کو اس زندگی کو رب کی پسند سے گزارے گا. عدلے کا بدلہ, یہ 40, 50, 60 سال اس رب کی مرضی کے گزار لو, اور وہ زندگی ہم فیہا خالدون, جس میں تم ہمیشہ رہنے والے ہو, وہ تمہاری مرضی کی ہوگی. کون نفع میرا, اس دنیا میں اپنے نفس کی سننے والا, اپنے معاشرے کی سننے والا, اپنے دوستوں کے رنگ میں رنگنے والا, یا رب کے رنگ میں. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صفہ, اللہ کا رنگ, اور کون ہے زیادہ اچھا اللہ سے رنگ میں. تو اصل بات کیا ہے کہ وہاں उसको दिल पसंद जिंदगी मिलेगी जो यहाँ रब की पसंद से जिएगा। फी जन्नत नालिया, बुलंद जन्नतों में होगा। क्यों भाई बुलंद क्यों मिली? इसलिए कि दुनिया में बुलंदियों का तकाजा नहीं करता था, अपना नाम बड़ा नहीं करना चाहता था, स्टेटस कॉन्शियस नहीं था, ब्रांड नेम्स का रसिया नहीं था, वो तो आजिज मिजाज मिस्कीन वक्त गुजारने वाला बंदा था। खुतूफुहा दानिया, जिसके मेवे झुके पड़े होंगे, और कहा जाएगा कुलू वश्रबू हनीयम, खाओ और पियो खुशी से, हनीया जितना दिल चाहे खाओ। अब इंसान सोचता है अल्लाह ताला इतना कुछ क्यों मिल रहा है, ये एहसान है? कहा नहीं, बीमा स्लफ तुम फिल अया मिल खालिया, ये कमाई है तुम्हारी पिछले दिनों की मेहनत की, जो गुजरे हुए दिनों में मेहनत करके आए हो ये उस पे तुम्हारे साथ हो रहा है। कितना खुशकिस्मत है ये इंसान, और अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि हम इसी में हो, हमारी दुनिया में आंखें खुल जाएं और हिसाब किताब का फिक्र हमें वाकई बेचैन कर दे। और इसके बरक्स दूसरा बदबख्त भी है कि जिसकी जिंदगी अपनी मर्जी की थी, वह अम्मा मनूत या किताब हो बिशिमाली, और वो जिसको उसकी किताब बाएं हाथ में दी गई, फयकूलो या लैतनी लम ऊत किताबिया, वो कहेगा हाय काश मैं अपनी किताब ना दिया जाता, मुझे मेरा नामे अमाल ना मिलता। मुझे ऐसे लगता है जैसे कुछ बच्चे हैं ना, लड़के बच्चे या कोई टीनेजर्स होते हैं जिनकी तवज्जो पढ़ने की तरफ नहीं होती, पढ़ते नहीं, और फिर जब पेपर गलत करके आते हैं तो बाद में दुआएं क्या करते हैं, अल्लाह करे पेपर ही घूम जाए, रिजल्ट आए ना, जंग ही लग जाए, अल्लाह करे सबको ऐसे ही पास कर दिया जाए। क्यों किया जो कुछ नहीं, जो चीज खराब होती है उसको कहते हैं अल्लाह करे ये किसी की नजर में ही ना आए, ये तो शर्मिंदगी होगी। किसी को कोई बुरी चीज तोहफे में दिया है फिर बाद में कहते हैं हाय ये गुम ही हो जाए, वो खोल के देखे ही ना कि मैंने उसको क्या दिया। वला मदरी मा हिसाबिया या लैताहा कानत कानतिल काज़िया, ऐ काश मेरी मौत मेरा काम तमाम कर देती। यानी ये वही ख्वाहिश हसरत है जो सूरत नासियत के आखिर में आता है, या मैं तसल्लुन में के यकूलुल काफिरु या लैतनी कुंतु तुराबा, नासियत है कि काफिर कहेगा काश मैं मट्टी हो जाता, काम किया नहीं तो आज अच्छा है कि ना ही आऊं सामने। मागनानी मालिया, मेरा माल भी मेरे काम नहीं आया। हलकन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत ने मुझे हलाक किया, मेरी अथॉरिटी मेरी जॉब मेरा घर, ये सल्तनत ही है ना छोटी छोटी जिनको बना के बैठे हुए और जिसकी वजह से रब को भूलते हैं। इतना कुछ कह रहा है लेकिन अल्लाह को कोई रहम नहीं आ रहा। हुक्म दिया जाएगा खुजूहु फगुल्लू, फरिश्तों इसको पकड़ो और तौक पहना दो। सुम्मल जहीम असल्लू, फिर इसको जहन्नुम में झोंक दो, जैसे लकड़ी डाली जाती है ना तन्नूर में इसी तरह इसको झोंक दो। सुम्म फी सिलसिलतिन सब ऊन ज़िरान फसलुकु, फिर इसको 70 हाथ लंबी जंजीरों में जकड़ दो। क्यों, इसका जुर्म क्या था? इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहि लज़ीम, ये बहुत बड़े रब पर ईमान नहीं लाता था, इसको उसकी कुदरत का यकीन नहीं था, और फिर इसी तरह कुछ उसके और कामों की फहरिस्त। अजीज साथियों, हम सब यहाँ क्यों बैठे? अपने हिसाब के लिए। हमने इस शऊर को बेदार करना है कि हमारी हर बात लिखी जा रही है, माँ कदमों दुनिया में रहते हुए जो आगे भेजी किसी भी सूरत में। लेकिन आयत का अगला हिस्सा भी कुछ वक्त चाहता है, और वो क्या है? वह आसारा हूं, जो पीछे छोड़ा उसको भी फरिश्ते लिख रहे हैं। आसार क्या है, अब इस पर बात करेंगे, और मेरा ख्याल है कि आज के इस मौजू की फिर आखिरी बात होगी। कदम हो तो हम सब समझते हैं ना, नेकी की सूरत में या आखिरत में जो आगे जाके बदले मिलेंगे, लेकिन आसार क्या है, असर क्या है? आसार दो तरह के होते हैं। एक वो है जो हम सब अपने वजूद से अपने इर्द गिर्द के माहौल पे छोड़ रहे हैं। हम जहां भी जाते हैं हमारी वजह से महफिल का रंग बदलता है कि नहीं बदलता? कोई एक शख्स भी आ जाए, अगर फिजिकली इसको देखें, हम सब यहां बैठे हैं, और अगर कोई बहन आती है और उन्होंने तेज खुशबू लगाई हुई है, तो इस कमरे में आते ही चारों तरफ खुशबू फैलती है, ये उनका असर है। या कोई पसीने में भीगा हुआ शख्स आए तो उसकी जो बदबू आती है उसको भी असर आता है, ठीक है। फिर इसी तरह आप देखिए कि हम में से हर एक अपने आमाल की वजह से भी अपनी सोसाइटी में एक असर रखता है। कुछ लोग आते हैं तो महफिल का रंग और बदल जाता है, लोग और लय में आके सुर में सुर डाल के नाचते हैं और गाते हैं, और कुछ लोग आते हैं तो लोग अपने दुपट्टे ठीक करने लगते हैं। फर्क किस बात का? असर का फर्क है। हम अपने आप से पूछें कि मैं जब किसी महफिल में होती हूं तो वहां कैसी तब्दीली आती है। हम सब असरात छोड़ रहे हैं अपने अमल के साथ, अच्छे या बुरे। हम में से हर एक एक मुहर्रिक बनता है, इंसेंटिव देता है लोगों को, लोगों की जिंदगी में ये अच्छी बात लाता है या बुरी लाता है। सच है कि नहीं? सबसे ज्यादा हम किन की बात सुनते हैं? अपने दोस्तों की। आता ना कि अलमरु अला दीनी खलीली ही, आदमी अपने भाई के दीन पे होता है, जो दोस्त के दीन पे होता है। दोस्त जो करते हैं हम भी अमूमन वही करते हैं। तो पहले असरात की किस्म क्या है कि हम अपनी जिंदगी में रहते हुए अपनी, आप इसको ऐसे कह लें कि हम अपने क्या इम्प्रेशन छोड़ रहे हैं। इम्प्रेशन पड़ता है ना, आप किसी को पहली दफा मिलते हैं, उसका कोई इम्प्रेशन पड़ता है कि नहीं पड़ता? किसी को एक नजर देखते हैं आपके दिल में उसका इम्प्रेशन पड़ता है। तो इसको एक तरह तो आप ये समझ लें कि हम अपने क्या इम्प्रेशन छोड़ रहे हैं इस दुनिया पे, हम इस जमीन पे एक कैसा इजाफा है, हमारी वजह से नेकियों की तरबीज हो रही है या गुनाहों की तशखीर हो रही है। हम हर वक्त फैशन का सिंबल बन के फिर रहे हैं लोगों के अंदर, कि या फिर हम उनको कोई और अच्छी बात बता रहे हैं। इसी तरह आसार की एक दूसरी किस्म भी है, और वो क्या है, और ये है बड़ी अहम, जिस पे हमें गौर करना है, और यही है पिन पॉइंट हमारे आज के दर्स का। वो क्या है कि आसार क्या है जो हम अपने मरने के बाद अपने पीछे छोड़ जाएंगे। मसलन आप देखिए कि हम सब ने जैसे अभी सुना कि हम सबको इस दुनिया से जाना है। जब भी कोई इंसान मरता है तो उसकी पीछे छोड़ी हुई चीजें, तरका जिसको बोलते हैं अपनी जुबान में, विरसा कह ले, विरासत कह ले, हमारे आसार ही हैं, ऐसे ही है ना। हम जो इस दुनिया में जाने के हम छोड़ के मर जाते हैं, हमारे कपड़े हमारे असरात हैं, हमारे घर वाले उनको देख के रोते हैं, ये पहनती थी, ऐसी लगती थी, ये करती थी, हमारी बिलोंगिंग्स हमारे असरात हैं, कैसी हैं, जो भी हैं उसको देख के लोग हमें याद करते हैं, हमें देख के उसको रोएंगे। इसी तरह आप देखें कि हम जमीन के जिन टुकड़ों पे बैठ के नेकी या बदी करते हैं, वो भी कल कियामत के दिन हमारे असरात बनेंगे। सूरह ज़िलज़ाल में आता ना, यौमा इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन खबरें देगी लोगों की, क्यों, बि अन्ना रब्बका औहा लहा, क्योंकि रब ने उसको इसकी वही की कि तुम ऐसा करो। बस आप देखिए कि आप तकरीबन एक घंटे से यहां बैठे हुए हैं और बड़ी मोहब्बत के साथ अल्लाह के कलाम को सुन रहे हैं। अगर अभी ये महफिल बर्खास्त हो और हम सब बिखर जाएं और नमाज पढ़ें और फिर कहा जाए कि चले आए दोबारा इस कमरे में बैठते हैं, शर्त एक ही है, एग्जैक्टली जहां जो बैठा था वहीं बैठे, नहीं मुमकिन। बल्कि अगर ये कुर्सियां जिन पे अगर आप बैठे, इनको बाद में कोई उठा दे सारी और आप दोबारा कहें कि चलें इसको बिखेरते हैं और बैठते हैं, लेकिन शर्त है कि हर एक ने उसी कुर्सी पे बैठना है जिस पे पहले बैठा था, पहचान लेंगे उस कुर्सी को? मुमकिन ही नहीं। एक जैसी, एक रंग, एक ही चीज, अंदाजा आप कर सकते हैं इस जगह बैठी थी, ये जगह थी, वो थी, 100% नहीं जानते। लेकिन क्यामत के दिन ये जगह जहां आप बैठे सुन रहे हैं, ये जमीन, ये कुर्सी और इस जमीन के नीचे की 7 जमीनें, ये सब गवाही देंगी कि अल्लाह यहां बैठ के इन्होंने तेरा कलाम सुना था। नक्तुबु मा कद्दमु वासारहुम, हर वो जगह जहां बैठ के नेकी या बदी कर रहे हैं वो जगह कल क्यामत के दिन गवाही देंगी। 3-3 घंटे बैठ के यहां देखते थे ये अल्लाह ताला, ये टेलीफोन का रिसीवर गवाही देगा कि ये कान को लगा के घंटा घंटा दूसरों की हिप्तें करते थे, एक एक चीज गवाही देगी। आपको मालूम है कि आज की लेटेस्ट रिसर्च क्या है, बल्कि अब तो इससे भी और आगे आ गई होंगी। ऐसे कैमरे ईजाद हुए कि जब कोई इंसान कहीं बैठा है, आम तो होता है ना कि सामने बैठा तो इमेज लिया, तस्वीर खिंच गई, लेकिन अब इतने सेंसिटिव कैमरे हैं कि आप वहां बैठे, आप उठ के वहां से चले गए, 3 मिनट तक उसके बाद अगर वहां कोई तस्वीर खींचे तो उसका इमेज उसमें आ जाता है। साइंस ने ये प्रूव कर दिया कि हम इस जगह पे अपने प्रिंट्स छोड़ रहे हैं। बस हम देखे, मैं बोल रही हूं ना, आप भी बोलते हैं, आप अपने मुंह के आगे हाथ रखें, आपको कुछ महसूस होता? वेव्स। ये जो मेरे लव्स है ना, ये आप तक कैसे पहुंच रहे हैं? ये हवा में फैल रहे हैं, ये वेव्स बन के आप तक आ रही हैं, आप तक आ रही हैं, और ये फिजा मेरे इन लफ्जों को जमा कर रही है। और आपको शायद हैरत होगी सुन के कि पिछले दौर के मारूफ लोगों की आवाजें कैच भी कर ली गई। साइंस ने इस चीज पे काम कर लिया है कि सब आवाजें स्टोर्ड हैं इस दुनिया में। काम किस पे हो रहा है कि अब इसको रीप्ले कैसे करें, वो रीप्ले बटन ईजाद होने वाला है। और क्यामत के दिन बोलेंगी ये चीजें, ये हमारी खाल बोलेगी, कुरान पाक में आता है ना, उनकी जुलूद, उनकी चमड़ियां बोलेंगी। और आज साइंस कहती है कि इंसान की आवाज का बेस्ट रिसेप्टर, उसको कबूल करने वाला उसकी खाल है। ये बोल, ये लिख रही है मेरी बातें। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, एक रोशन किताब में ये सब कुछ लिख रहे हैं। आज का कंप्यूटर क्या है, इसकी स्क्रीन क्या है? इमाम मुबीन नहीं है। आप एक चीज सेव कर दें, फिर देखें उसकी हजारों कॉपियां कर लें, एक क्लिक करते हैं 100 लोगों को आप ईमेल भेज देते हैं। ये क्या है? ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं। तो अल्लाह ताला के रिकॉर्ड तो कितने ही मजबूत नहीं होंगे। हकीकत क्या है कि हम हर वक्त इस जमीन पे अपने नक्श छोड़ रहे हैं। मसलन एक शख्स मस्जिद से निकलता है, बड़ा अच्छा जूता नजर आ गया, चलो मेरा तो पुराना था, अपना छोड़ा उसका पहन के निकल गया, चल पड़ा। मालिक का क्या गया, 50, 40, 100 कितने का जूता उसने ले लिया, नुकसान हुआ। लेकिन उसने खुद क्या किया, जहां जहां वो हराम का जूता पहन के चोरी का गया, मा कदम हुआ सारा हूं, मोहर सब करके जा रहा है कि यहां यहां ये जूता पहन के आया था जो इसने चोरी किया था। और वो क्यामत के दिन वो टुकड़े बोलेंगे कि अल्लाह यहां भी आया था, यहां भी आया था, यहां भी आया था। किसी ने गलत काम किया, गलत चीज बेची, उस बोतल को खोला, उसको साफ किया, उसको रेफ्रिजरेटर में लगाया, ग्राहक आया उसको दी, कागज लिफाफे में डाली, उसका हिसाब किया, जहां जहां उस शराब की बोतल का असर जाएगा, उस चीज पे, उस कैन पे, उस चीज पे उसका नक्श सख्त हो गया कि अल्लाह इन हाथों ने छुआ था इस गंदी चीज को, और इसको पीने के बाद जो उसने गुल कपाड़ा किया वो भी इसके असर में डाल, क्योंकि ये इसके हाथों से होके गई थी। हम में से हर एक या तो अच्छा सदका जारिया छोड़ रहा है या बुरा। और हम इस जमीन पे साइलेंट भी नहीं है, यानी हम 1 घंटे से इस कमरे में बैठे हैं ना, लेकिन आपको मालूम है इस 1 घंटे में जमीन के इस टुकड़े ने कितने मील सफर कर लिया? घूम रही है ना जमीन, 24 घंटे में पूरी वापस आ जाती है, तभी तो रात और दिन बदलते हैं। हमने इस कमरे के अंदर ही सिर्फ नक्श नहीं लगवाए, बल्कि जहां तक 1 घंटे में ये कायनात में जमीन घूमी वहां तक हमारे नक्श लग गए। बंदा सोचे तो उसके होश गुम हो जाते हैं। जैसे आप जहाज में कभी बैठे, आप जहाज के अंदर कैसे होते हैं? साइलेंट होते हैं, आपको कुछ नहीं लगता, लेकिन वो जहाज उस 10 मिनट में कहां से कहां चला जाता है। आपने उस दिन में, उस वक्त में जितना काम किया, उस जगह पे आपके टुकड़े निशान लग गए। और मुझे हैरत उस वक्त होती है जब लोग ना कदम जमीन पे, ना आसमान पे, हवाओं में लटकते हैं और उस वक्त भी गुनाह की चीजें देखते हैं एम्यूजमेंट के नाम पे। 10-10 घंटे की फ्लाइट्स हैं और आपको वो चीजें प्रोवाइड की जाती हैं कि आप इंजॉय करें। मैं सोचती हूँ अल्लाह, ये जो कानों को लगा के सुन रहे हैं, जो आंखों से देख रहे हैं, ये इस कितनी जमीन के ऊपर मोहरें सब तो रही कि यहां से यहां पे इसने ये किया था। और जितना मजा मुझे जहाज में नमाज पढ़ने का आता, यकीन करें मैं इस शऊर के साथ पढ़ती हूँ कि अल्लाह लंबा सजदा करने की दिल चाहेगा। लंबा क्यों? कि जहां तक इस नरसे में ये जहाज जाएगा, गुजरेगा, उस जगह पे मेरे असरात लगा देना। आप नेकी के लिए निकलते हैं, आप कहते हैं मैं नहीं आ सकती, बड़ी दूर हूं, आपको नहीं पता, घर से निकलने से लेकर उस मस्जिद तक आने के लिए जिस जिस जगह आपकी गाड़ी के टायर लगे, माँ कद्दम हुआ सारा हूँ, वो टुकड़े कल गवाही देंगे, ये इतनी दूर बैठ के आई थी और इसने तेरी बात को सुना था। वो गैस, वो माइलेज गाड़ी का, वो नुकसान, जो भी बजाहर लगा, एक एक चीज सामने आएगी। और आखिरी चीज आसार में वो क्या है जो हम अपने पीछे छोड़ जाएंगे, वो हमारे बच्चे। मेरा हाल बेहतरीन मिसाल है असरात की, हमारे बच्चे ऐसे ही है ना। कोई इंसान मरता है तो अमूमन पीछे क्या पूछते हैं लोग, जैसे कभी आपने देखा हो कि कोई औरत अगर जवानी में मर जाए, पीछे उसकी माँ या सास उस छोटे से बच्चे को देखती है जो उसने छोड़ दिए, तो क्या कहते हैं, खुद मर गई, निशानी छोड़ गई। तो निशानियां क्या हैं, असरात हैं। हमारे बच्चे हमारे असरात हैं। व्हाट आई एम लीविंग बिहाइंड, ये है वो सवाल जो हम सबके सामने खड़ा है। मैं अपने पीछे क्या छोड़ के जा रही हूँ, जब कल मैं दुनिया से जाऊंगी तो क्या मेरे बच्चे मेरे लिए एक बेहतरीन असर साबित होंगे या बदतरीन। कैसा सदका जा रही है, अच्छा या बुरा। सारी जिंदगी में रो रो के मुश्किलों में पड़ के जो नेकियां मैंने जमा की, क्या मेरे बच्चे उन नेकियों को खाने का बायस तो नहीं बनेंगे। क्योंकि एक रिवायत में आता है कि एक शख्स जब जन्नत के क़यामत के दिन जाएगा और अपनी नेकियां ढूंढ रहा होगा, मैंने इतना कुछ किया था, इतना कुछ किया था, वो किधर है, वो कहेंगे हाँ तूने किया था लेकिन तेरी औलाद तेरी नेकियां खा गई। कैसे, क्योंकि शऊर के साथ पाला नहीं, दुनिया में उनकी तरबियत नहीं की, उनको नफ्स का गुलाम बना दिया, उनको जमाने के बेरहम हाथों पे छोड़ दिया, अपने डॉलर्स अपने डायमंड्स और अपने हीरे और अपने सोने को तो सेफ्टी डिपॉजिट में रखा, और कंगनों से कीमती औलाद को खुली सड़कों पे छोड़ दिया, जमाने के बेरहम हाथों में छोड़ दिया। इनकी सोचों को बदलो, इनके दिल को बदलो, इनके बोलने के अंदाज को बदलो, इनके खाने पीने रंग ढंग को बदलो, तुम जैसा चाहो इनको बना लो तो मजा आता। माँ कद्दम हुआ सारा हूँ, बात कहीं की भी हो, लेकिन अमूमन देखा गया है कि आज के दौर में औलादें आंखों की ठंडक नहीं रही। रब्बना हबलना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम व जालना लिल्मुत्तकीना इमामा। दुआ तो मांगी जाती है कि अल्लाह मेरे शौहर और मेरे बच्चों को मेरी आंखों की ठंडक बना दे और मुझे मुत्तकीन का इमाम बना दे, नेक लोगों का इमाम बनो। लेकिन अमली तौर पे देखा जाए तो औलाद आंखों के आंसू बन गई है। पहले बच्चे माँ बाप से डरते थे, अब माँ बाप बच्चों से डरते हैं। पहले बच्चे कोशिश करते थे कि माँ बाप को खुश रखें, अब माँ बाप कोशिश करते हैं कि बच्चों को खुश रखें। पहले घर के बड़ों से पूछा जाता था क्या पकेगा क्या खाओगे, आज बच्चों से पूछा जाता है क्या खाओगे। पहले घर के मामूलात बड़ों से चलते थे, शौहर की काम देखे जाते थे, उसकी मसरूफियात, अब हमारे स्केड्यूल बनते हैं बच्चों के। आज छुट्टी का दिन है तो सारा दिन सो सकते हैं, दावत भी जा सकते हैं, पार्टी में भी, दर्स में भी, जहां भी, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है। असली साथियों, ये मौजू ऐसा नहीं है कि मैं इसको अब छेड़ूं, क्योंकि ये अपनी जगह एक मुकम्मल मौजू है, लेकिन सिर्फ एक एहसास बेदार करने के साथ ही अपनी बात को छोड़ूंगी कि क्या हम अपनी जिम्मेदारी से आगाह हैं। कल क्यामत के दिन हमसे सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कि हम क्या करते थे, बल्कि ये भी पूछा जाएगा कि हमारे बच्चे क्या करते थे। हमारी नमाज का हिसाब खाली नहीं होगा, हमारे बच्चों की नमाज का भी होगा। हम क्या पहनते थे, इसका ही जवाब नहीं देना पड़ेगा, बल्कि अपनी औलादों के पहनावों का जवाब भी देना पड़ेगा। तब देखिए कि औलाद आंखों की ठंडक कब बनती है। जब उनको रब के साथ जोड़ा जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आज हमने अपने बच्चों को कटी हुई पतंग की तरह छोड़ दिया, उनको रब से नहीं जोड़ा, और नतीजा क्या हुआ कि वो हमसे भी कट गए। हम बच्चों को अगर अल्लाह के करीब करते हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा फायदा हमें क्या होता है कि वो हमारे करीब हो जाते हैं। बच्चों की तरबियत छोटे बड़े वो तो मुख्तलिफ दर्जे हैं, लेकिन इस लम्हे जो हमारे सीखने और करने की बात है, और वो क्या है कि अगर हमने उनको इस किताब से जोड़ दिया जिसने माँ बाप के हकूक बताने थे, जिसने उनको बताना था कि तुम अपने माँ बाप के सामने कैसे बन बैठो, वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह मिनज़्ज़ुल्ली, क़ुरान माँ बाप के सामने बैठने का तरीका बताता है कि ऐसे बैठो जैसे ज़िल्लत के साथ बाजू समेट के बैठते हैं। माँ बाप से बात कैसे करो, वकुल लहुम क़ौलम मैसूरा, नरम बात करो, वला तन्हरहुमा, छिड़को नहीं डांटो नहीं, और उनके लिए तुम्हारी लबों पे बात क्या हो, रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप पे रहम फरमा जैसे उन्होंने हम पे किया जबकि हम छोटे थे। क्या हमारे बच्चे इन तमाम आयात को समझते हैं? क्या हमने उनको ये शऊर दिया? दुनियावी तालीम के लिए जो इख्तमाम है वो जिक्र करने की भी जरूरत नहीं, हर एक को पता है। हफ्ते के 5 दिन और प्राइम टाइम कई घंटे घर वालों के इख्तमाम, उसके लिए खर्च, सुबह घरों की हालत, सबको मालूम है। ये इन मासूम जहनों में अपने असर छोड़ रहा है